नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत छठा स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 50। पंच भी कुरुते स्वार्थान पंच वेदात पंच भी एकस्तु षोडशेन एकस्तु षोडशेन स्त्रीन स्वयं सप्तदशोष्णुते पंचभी पांच कर्मेंद्रियों वाणी बाहें पांव गुदा और जनेन्द्रिय कुरुते करता है स्वार्थान अपनी इच्छित रुचियां पंच पांच इंद्रिय विषय ध्वनि रूप स्पर्श गंध और स्वाद वेद जानता है अथ इस प्रकार पंच भी पांच ज्ञान की सुनना देखना सूंघना आस्वादन करना और अनुभव करना एक एक तू लेकिन षोडशेन इन 15 तथा मन 16 के द्वारा त्रीन अनुभव की तीन कोटियां सुख दुख और दोनों का मिश्रण स्वयं वह स्वयं जीव सप्तदश 17वीं वस्तु अश्नुते भोग करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य शील ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय और पांच इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व है वो है जीवात्मा जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव तीन प्रकार की स्थितियों का भोग करता है जैसे सुख दुख और सुख दुख का मिश्रण। तात्पर्य हर व्यक्ति अपने हाथ पैर और अन्य इंद्रियों से काम में लगा रहता है जिससे उसके मनोरथों के अनुसार निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो सके। वो पांच इंद्रिय विषयों का अर्थात रूप ध्वनि स्वाद गंध और स्पर्श का आनंद बिना यह जाने लेना चाहता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है जो कि है परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मनुष्य को भौतिक स्थिति में रखा जाता है। मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन नहीं करना चाहता। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु हैं कि मोहग्रस्त जीव को ये उपदेश देने के लिए स्वयं आते हैं कि किस तरह आज्ञाकारी कर्म करना चाहिए और क्रमशः भगवत धाम लौटना चाहिए जहाँ वो आनंद और ज्ञान का नित्य शांतिमय जीवन प्राप्त कर सके। जीव के शरीर होता है जो भौतिक तत्वों का अत्यंत जटिल संयोग है और इस शरीर से अकेला संघर्ष करता है जैसे कि श्लोक में एकस्तु शब्द द्वारा इंगित किया गया। उदाहरण के लिए यदि कोई समुद्र में संघर्ष कर रहा है तो उसे अकेले ही तैर करके उसे पार करना होता है। यद्यपि बहुत सारे मनुष्य हैं पानी में और बहुत सारे प्राणी भी हैं समुद्र में किंतु हरेक को अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है, कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए श्लोक बताते हैं कि आत्मा को अकेले ही कर्म करना होगा। यदि भी समाज है मैत्री है प्रेम उत्पन्न करना चाहता है किंतु कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। अतएव उसकी एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि कृष्ण को किस तरह से संतुष्ट किया जाए। कृष्ण भी यही चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भौतिक स्थितियों में मोहग्रस्त लोगों को एक हो जाना चाहिए और वे मनुष्य और राष्ट्रों के बीच में एकता के लिए प्रयास भी करते हैं किंतु उनके सारे प्रयास बेकार हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनेक तत्वों के साथ अपने अस्तित्व के लिए अकेले ही संघर्ष करना चाहिए। अतः उसकी एकमात्र आशा है कृष्ण की शरणागति को ग्रहण करना। जैसे कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्योंकि भगवान अज्ञान के सागर से मुक्त होने में सहायता कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, ऐ नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषम भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज सिद्धधूलि सदृशम विचिन्त्य। हे कृष्ण, हे नंद महाराज के लाडले, मैं आपके नित्य दास हूँ, किंतु न जाने कैसे इस अज्ञान सागर में गिर गया हूँ। यद्यपि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, किंतु अपने को बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि आप मुझे निकाल लें, अपने चरण कमल में धूलि के एक कण की तरह मुझे टिका लें, तो उससे मेरी रक्षा हो सकती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार न व जले तरी बारे ना देखी उपाय। हे प्रभु, मुझे स्मरण नहीं है कि कब मैं इस अज्ञान के सागर में किस तरह से गिर गया। अब अपनी रक्षा करने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यदि कोई कृष्ण को शुद्ध भक्त बनना चाहता है, तो वह अज्ञान के सागर से उबार लिया जाता है। ओम अज्ञान्ति मिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में यहाँ पर समझाया गया कि कैसे जीव अपने भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि करिष्यति। तो ये जीव जो भगवान का अंश है, भौतिक जगत में फंस गया है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर परिवार से, करोड़पति परिवार से है, और किसी कारणवश अपने घर से अलग हो जाता है, और वो भूल जाता है कि मैं फलाने परिवार का हूँ, ये मेरा घर है, और वो कहीं पर फुटपाथ पर लेटा हुआ है भिखारी की तरह, उसे कोई आश्रय नहीं है, भटक रहा है इधर उधर, बड़े दुखी अवस्था में है। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, हम भगवान को भूल जाने के कारण इस भौतिक दुनिया में गिर गए हैं। पता नहीं कितने सालों से गिरे। इसलिए आज के जो प्रवचन में श्री प्रभुपाद एक भजन कोट कर रहे हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, अनादि कर्म फले पोड़ी भवार न व जले तोरी बारे ना देखे उपाय। इसका अनुवाद है भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अनादि कर्म फले। अनादि मतलब पता नहीं कब से कर्मों पे फंसे हुए हैं, और भवसागर में गिर गए हैं। तोरी बारे ना देख उपाय, कोई उपाय नहीं दिख रहा कैसे बाहर निकले। ए विषय हला हले दिवा निशी हिया ज्वले, मन कबू सुख नाही पाए। हाँ, इसका मतलब है ए विषय हलाहल, जैसे हलाहल जहर होता है, ये संसार का जो विष विषय जो है ये एक्चुअली जहर के समान है। और उससे क्या हो रहा है, दिवा निशी हिया ज्वले, हमारा दिन रात हृदय जल रहा है और मन कबू सुख नाही पाए। ऐसा ही भजन नरोत्तम दास ठाकुर भी बोलते हैं, वो कौन सा भजन है इसमें बोलते हैं, विषय विषय छाड़ी कभी नहीं, इसके पहले एक है विषय के बारे में बताते हैं कि विषय जो है ये भव सागर में व्यक्ति का हृदय जल रहा है। संसार विषा न ले दिवा निशी हिया ज्वले, जुड़े आते ना कोई नो उपाय, ये नरोत्तम दास ठाकुर भजन। तो ऐसे हम संसार सागर में एक्चुअली जल रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि एक्चुअली कोई व्यक्ति बहुत प्यासा होता है और पानी पीने जाता है और एक्चुअली वो पानी सोचता है कुछ रस होगा उसमें, उसको कोई गटर का पानी दे देता है जो जहर से भरा हुआ है। ऐसी हमारी स्थिति है, हम सुखी होने का प्रयास करते हैं इंद्रियों के विषय से, लेकिन कभी सुखी हो नहीं सकते। पहली बात तो इंद्रियों का सुख है भी बहुत थोड़े क्षण के लिए और है भी बहुत थोड़ी मात्रा में, संतुष्टि नहीं होती, व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। जैसे मृग तृष्णा में जो आप देखते हैं कि हिरण जो है दौड़ता है, उसको प्यास लगी है तो दौड़ता है उसको लगता है कि मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन है और अंत में वो गिर जाता है, मर जाता है, उसको पानी नहीं मिल पाता। तो ऐसी हमारी स्थिति है कि हम इंद्रिय तृप्ति में सुख में हमेशा, हर व्यक्ति सोचते हैं बाद में मैं सुखी होऊंगा, कोई स्कूल में विद्यार्थी है सोचते मैं स्कूल पास कर लूँ फिर सुखी हो जाऊँगा, स्कूल पास करने के बाद सोचता है कि मैं कॉलेज पास कर लूँ फिर सुखी हो जाऊँगा, कॉलेज पास करने में लगता है कि मेरे को जॉब मिल जाए फिर सुखी हो जाऊँगा, नौकरी मिलने का सोचता है कि अब बस मेरा विवाह हो जाए मैं सुखी हो जाऊँगा, फिर विवाह करने के बाद तो फिर आनंदम बुद्धि वर्धनम, फिर इसके पता चल जाता है कि अनंत चिंताएँ शुरू हो जाती, फिर लगता है मेरे बच्चे अब बड़े हो जाएंगे फिर मैं भक्ति करूँगा फिर सुखी होऊंगा, लेकिन कुछ सोल्यूशन है नहीं दुनिया का। इसलिए इंस्टेंटली भक्ति करना शुरू करना चाहिए, या जिस भी लेवल पर आप हो भक्ति में तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, पता नहीं कितने साल बचे हैं लाइफ में, नहीं वी डोंट नो हाउ मच लाइफ वी हैव, रिस्क हमेशा है। आपको पता होगा पिछले 4-5 महीने पहले एक प्लेन पानी में डूब गया, इंडोनेशियन एयरलाइंस, उसके बाद फिर और एक प्लेन इथोपियन एयरलाइंस, 5 महीने के गैप में करीब 2 प्लेन जिसमें हर एक में 150-200 पैसेंजर थे। तब बोलोगे ठीक है प्रभु जी प्लेन में जाना रिस्की है, हम ट्रेन में जाएंगे, इंडियन रेलवेज की जाए। लेकिन कल ही समाचार आया कि एक ट्रेन जो उड़ीसा से दिल्ली आ रही है बस भुवनेश्वर से निकली और कटक के पास ही ब्रिज के ऊपर ही उसके 2 बोगीज अलग हो गए, शायद अवला श्याम सुंदर का कोई जप कर रहा होगा इसलिए बोगी अलग भी हुए लेकिन गिरे नहीं तो बच गए पैसेंजर। लेकिन क्या गारंटी है, बोलो ठीक है प्रभु हम ट्रेन से भी नहीं जाएंगे हम तो कार में जाएंगे, आप कार अच्छी चला रहे हो स्लो चला रहे हो लेकिन सामने से कोई ट्रक आता है प्रेम से मिलने के लिए तो आप क्या कर सकते। 2-4 दिन पहले प्रभु जी के साथ में दिल्ली में था, हम निकलने वाले थे यमुना एक्सप्रेस हाईवे से ही हमें आना था और किसी ने देखा यमुना एक्सप्रेस हाईवे में एक बस जो है वो ट्रक के साथ क्लैश हो गया, पढ़ा आपने 20-25 लोग चले। तो आप बोलोगे ठीक है प्रभु जी हम कहीं बाहर जाएंगे नहीं हम पैदल जाएंगे, आप पैदल भी जा रहे हो पीछे से कोई मोटरसाइकिल आ जाए, फिर आप बोलोगे हम बाहर जाएंगे नहीं हम रूम में ही रहेंगे तो रूम में ही कोई प्रेम से हार्ट अटैक आ जाए तो क्या गारंटी, द नो गारंटी। बस इतना गारंटी है कि मृत्यु आनी है पक्का है। आप बोलोगे नहीं मैं च्यवनप्राश खा रहा हूँ मृत्यु नहीं आएगी, अभी च्यवनप्राश आप झंडू वैद्यनाथ डाबर पतंजलि चारों मिक्स कर खा लो फिर भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जिसने च्यवनप्राश बनाया वो कौन है, च्यवन ऋषि, वो कहाँ है, वो भी मर गए। तो जब च्यवनप्राश बनाने वाले मर गए तो आपका क्या नुकसान, भगवान एक बनाया जैसे जैसे कोई जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो कपड़ा ले लो ये धीरे धीरे खराब होगा। अभी एक कुर्ता अभी मैंने एक हफ्ते पहले लिया, लेकिन एक साल, दो साल, दस साल बाद ये कुर्ता रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे शरीर है, हर समय सोचते रहना चाहिए कि मेरी मृत्यु करीब आ रही है, और वो सत्य भी है। नहीं, यहाँ करीब 50-60 भक्त बैठे हैं, 100 भक्त, इसमें बहुत कम होंगे जो जिन जो ज़्यादा हर साल ज़्यादा जवान होते जा रहे हैं। और है ना, ऐसे कोई है यहाँ पर जो हर साल लगता है कि शरीर और ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है? नहीं। अपने आप की फ़ोटो देखो अभी और 20 साल पहले, कितना फ़र्क लगता है। नहीं, पहले आपको जब आपकी उम्र 25 या 30 है तो एकदम छब्बी चीक्स एप्पल की तरह लगता है, फिर 50 के बाद वो ड्राई फ्रूट बन जाता है ना, सब किशमिश अंदर चले जाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं चलो बालों में जो है कुछ डाई लगा देंगे, कितना भी, हाउ मच डाई यू पुट, इन द एंड यू विल डाई, है ना, कितना भी डाई लगा लो, अंत में तो मृत्यु होनी है। तो इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं है, लेकिन जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण को याद करो बस। जीव कृष्ण दासे विश्वास कोर लो तारो दुख नाय, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शोभाय। ये भजन सुने आपने, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शोभाय, राधा कृष्ण का नाम, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो ए मात्र बिकचाय। राधा और कृष्ण का नाम लो और संग चलो, गोलोक चलो, और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो भक्त वृंदावन में रह रहे हैं, कितना भाग्य है, बड़े बड़े देवी देवता भी इच्छा करते हैं कि ब्रज में वास मिले, चाहे वो बहुत भगवान ने आपको आलीशान कोई बड़े कोठी दे रखी है या एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वृंदावन में रहने को मिल गया, यही बड़े भाग्य की बात। क्योंकि वृंदावन की भूमि को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते रहे, ब्रज भूमि जो भगवान के चरणों से अंकित है। तो ये एक्चुअली सुख दुख तो सबको रहेगा, लेकिन जो ब्रज में रह रहे हैं उसके लिए दुख भी सुख है, और संसार में रह रहे हैं वो सुख भी दुख है। संसार में जो रह रहे भौतिक दुनिया में भगवान को भूल के, वो दिखने में सुखी है लेकिन वास्तव में दुखी है। तो संसार के लोग हैं वो भौतिक सुख में आनंद लेते हैं, दुख में दुखी होते हैं, और भक्त जो है वो दुख में सुखी होता है। तो दुख आने पर उसको लगता है यस ये भगवान की दया है, अगर दुख नहीं आते तो मैं शायद फिर दुनिया में ही सेटल होने का सोचता था, है ना, ये भगवान की कृपा है कि भगवान मुझे दुख भेज रहे हैं। जैसे अभी आप देखते हैं कि आप जब अगर आप गलती से अपना हाथ आग में डालते हैं तो क्या होगा, गर्म लगता है। वो गर्म लगना अच्छा है कि नहीं है? वो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको गर्मी नहीं लगती तो आपका पूरा हाथ जल जाता, पता ही नहीं होता। तो भगवान के रजमेंट जाते चटका लगता है, तुरंत हाथ निकाल लेते हैं गलत जगह पर। जैसे भगवान बार बार दुख क्यों भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं माय डियर सर दिस इज नॉट योर होम, ये आपका घर नहीं है, आपका घर गोलोक वृंदावन में। तो मैं कहानी बता रहा था कि एक बच्चा जो माता पिता को भूल के सड़क पे पड़ा है, उसकी दशा बहुत दयनीय है, वो भूल गया कि कौन मेरे माता पिता है। और उसके शहर से कोई व्यक्ति आके देखता है तो उसको बोलते हैं अरे उठो तुम तो उसके बेटे हो, अरे तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कोठी रखी हुई है, तुम तो बड़े अमीर व्यक्ति हो, यहाँ क्या भीख मांग रहे हो। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर जो सड़क पे गिरा हुआ है अगर उसको कोई भोजन भी देता है दो बार तो भी प्रॉब्लम, समस्या का अंत नहीं होगा। अगर कोई उसको वहाँ पे वीडियो भी दिखाता है, अच्छी अच्छी मूवी दिखाता है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन कोई उसको हाथ पकड़ के वापस उनके पिता माता से मिलाता है तो वो उसका असली मित्र है, असली बंधु है। ऐसे भौतिक दुनिया में दुख भोग रहे हैं तो कोई व्यक्ति आके थोड़ा सा सुख दे भी दे तो क्या फ़ायदा। जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक इंद्र तृप्ति करने के लिए लोगों को इनकरेज करते हैं कि दुख को भूल जाओ सुखी रहो, लेकिन वास्तव में असली मित्र वैष्णव हैं, जो उनको याद दिलाते हैं, कृष्ण के करीब ले आते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं ऐसा, जो कृष्ण का याद दिलाता है वही मित्र है, वही पिता है। चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रीखंड में गए, वहाँ पर एक महान भक्त रहते थे मुकुंद सरकार, और मुकुंद सरकार के बेटे का नाम था रघुनंदन। मुकुंद आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वैद्य थे। और चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन पूछा, मुकुंद आप तो पिता हो, रघुनंदन आपके बेटे हैं, क्या ये सही है, ये रघुनंदन पिता हैं और आप बेटे हो, कैसा लगेगा आपको? कि ना आपके बेटे सामने कोई पूछे, प्रभु ये आपका बेटा है या आपका बाप है? महाप्रभु पूछ रहे थे। तो मुकुंद बोले, रघुनंदन मुझे कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए वो मेरे पिता हैं। तो महाप्रभु बोले, यस ये सही है, जो कृष्ण भक्ति दे वही पिता है, वही गुरु है, वही माता है, इसलिए गुरु का आदर किया जाता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं ऐसे, तोमारे लोइते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। तोमारे लोई तो आमी होइनु अवतार, आपके लिए मैंने अवतार लिया। भगवान गौरंग मेरे और आप जैसे बुद्ध जीवों के लिए आए, नहीं तो भगवान को क्या पड़ी है गोलोक से यहाँ पर आना। कोई व्यक्ति बहुत महल में रह रहा है, उसको बोले कि जाओ गटर में जो व्यक्ति गिरा पड़ा है उसको बाहर निकालो, तो क्या पड़ी है? भगवान इतने दयालु हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि भगवान अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं हमको बाहर निकालने का, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन जीव निकलना नहीं चाहता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि भगवान को कितना भी हेल्प करें जब तक हम कोऑपरेट नहीं करते हम बाहर नहीं निकल सकते। से कोई डूब रहा है, बोलता है प्रभु जी मैं डूब रहा हूँ, रस्सी पकड़ो। हाँ ये रस्सी तो पकड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी शक्ति बहुत कमजोर है, पकड़ नहीं पा रहा। अगर रस्सी पकड़ने के बाद भी ध्यान नहीं देता, सोचता रही मैं देख रहा हूँ रस्सी कौन सी है, नायलोन की है कि लाल रंग की है, पीले रंग की है, पकड़ो बाहर निकलो। तो गुरु महाराज और वैष्णव उनको रस्सी दी है, वो रस्सी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रस्सी को पकड़ना है और तुरंत बाहर निकलना, टेक शेल्टर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के चैतन्य शिक्षाष्टक का एक श्लोक बता रहे हैं, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषम भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिन्त्य। ओ माई डियर सन ऑफ महाराज नंद, हे नंद नंदन, हे कृष्ण भवसागर में डूब रहा हूँ, कृपया मुझे बाहर निकालो और मुझे आपके चरणों में एक धूलि का कण, मेरे को छोटे से जस्ट पार्टिकल बना, भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए किसी तरीके से, यही जीवन की सफलता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर आगे भजन में बोलते हैं, आशा पाश शत शत क्लेश दे अविरत प्रवृत्ति उर्मीर ताहा खेला। वो बोल रहे हैं आशा पाश शत शत क्लेश दे अविरत, कि मेरे गले में सैकड़ों रस्सियाँ बंधे हुए हैं। गले में एक रस्सी हो तो कितना कष्ट होता है, कोई खींच रहा है, सैकड़ों रस्सी है, उसमें छह प्रमुख हैं। वो छह प्रमुख क्या हैं? हाँ आप जानते हैं, उनसे दोस्ती भी हो गई है कई जन्मों से, उसके बिना मजा ही नहीं आ रहा है ना। काम क्रोध लोभ हमको खींच रहे हैं और मेरे भवसागर में डुबो रहे हैं, और उतने में क्या हो रहा है साथ साथ सागर के पास में, काम क्रोध क्षय बत पाड़े देय भय, और ये चोर आ गए हैं, ये काम क्रोध ये चोर बोले गए और वो मेरे जीवन को अंत कर रहे हैं, अंत हो रहे हैं। पतित किंकर धरी पाद पद्म धूलि करे देहो भक्ति विनोद आश्रय। ज्ञान भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं इसके पहले, सॉरी, ज्ञान कर्म ठुग ठग दुई ठग, ठग समझते हैं, ठग ठग किसको बोलते हैं? ठग चोर को, यह ठग मतलब सब कुछ छीन देने वाला। तो बोल रहे हैं ज्ञान और कर्म ये दो ठग हैं, मोरे प्रतिया लोहिया अवशेष फैले सिंधु जले। मैं बाहर भी निकलने का प्रयास करूँ, काम और ज्ञान, कर्म और ज्ञान ये दिखने में तो अच्छी चीज़ें मानी जाती है, ज्ञान इंटेलेक्चुअल नॉलेज कर्म, लेकिन भक्ति में ये भी बाधाएं हैं। ये दो हाईवे रॉबर्स हैं, आप जैसे हाईवे पे जाओ ना रिस्की होते थे, अभी यहाँ ठीक है, थोड़ा आगे चले जाओ यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे दिल्ली और यहाँ के बीच में कहीं आपकी कार अगर रुक जाए, मैंने सुना है कुछ लोगों से कार अगर रुक जाए कहीं तो लोग बस पूरा पकड़ के लूट लेते हैं, कभी रोकना नहीं चाहिए कार, रिस्की है वो हाईवे के ऊपर, सही है ये बात आपने सुना है सर? तो ये दो दो छोर हैं, मिस्टर मिस्टर ज्ञान और मिस्टर कर्म। लोगों को कर्म और ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति में ये भी बाधाएं हैं। तो और उन्होंने क्या किया, मुझे और दुख के सागर में डाले, फिर मैं क्या करूं। ए समय ए हेनो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, मेरे एकमात्र बंधु कौन है, कृष्ण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, चैतन्य महाप्रभु सबको आदेश देते हैं, नित्यानंद हरिदास जाओ प्रति घरे जाए मागे भिक्षा, सब घर घर में जाओ और उनसे भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो भक्तिविनोद ठाकुर वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण ही मेरे माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं। कृष्ण कृपा करी तोलो मोरे बले, मेरे को बाहर निकालो। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम गिर रहे हैं और भगवान की मदद के बिना हम बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे परपट में प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि हर जीव संसार में डूब रहे है। इसे अगर आप समझो, आप सागर में तैर भी रहे हो, तैरना आता भी है, और दूसरी मछली भी हैं, दूसरे प्राणी भी हैं, लेकिन हर एक को तैरना होगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं प्लेन का, हवाई जहाज जब ऊपर जाता है, जब वो ग्राउंड पर होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन एक बार ऊपर जाने के बाद हर एक को अपना अपना प्लेन स्वयं चलाना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला चला रहा है, मैं नहीं भी चलाया तो कोई बात नहीं, सब एक साथ पहुंच जाएंगे। शाम के समय आप देखते हैं पक्षियों का समूह वापस घर जा रहे हैं, तो एक पक्षी लीडर है, ऐसे ऐसे वो वी शेप में होते हैं, एक पक्षी फिर चार पक्षी फिर आठ पक्षी, देखा आपने शाम के समय, तो सारे पक्षी जा रहे हैं, लेकिन हर एक को अपना पंख चलाना होगा। कुछ सोचेगा, अरे प्रभु जी मैं थका हूँ, आगे वाला पक्षी चला रहे हैं ना, कोई बात नहीं, तो मैं नहीं भी किया। कई बार डिवोटी सोचते हैं, प्रभु जी मैं तो इतना अच्छा भक्त नहीं हूँ, मेरे लीडर है ना, मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छी साधना करते हैं, जय गुरुदेव बाय गुरुदेव, है ना, मैं नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मेरे गुरु महाराज जब कर रहे हैं ना, वो मेरे पर कृपा कर रहे हैं। अरे भैया कृपा क्या कर रहे हैं, आपको मंत्र दिया है। जब डॉक्टर के पास आते, डॉक्टर साहब बहुत बीमार हो गया ये लोग, बोला ठीक है दवाई ले लो। फिर अगले दिन पूछा डॉक्टर ने, कैसे हो, डॉक्टर साहब दया करो, ठीक नहीं हो रहा, आपने दवाई ली क्या, डॉक्टर साहब दवाई तो पसंद नहीं है, दया करो दया करो। डॉक्टर साहब दया क्या करूँ मैं तुम्हारे को, नहीं मेरी मेरी बीमारी दूर कर दो, अगर बीमारी दूर करनी है तो आपको दवाई लेनी होगी। तो कई बार डिवोटीज होते हैं, गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, वैष्णव से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा, जो गुरु की मुख्य आज्ञा है, हरि नाम का आश्रय लो, नामाश्रय करी जतन तुम्ही ठाकह आपना काजे, नाम का आश्रय लेना यही सबसे बड़ी गुरु सेवा है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आपने इतना हमारे लिए किया है, हम आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, जो चीज मैंने आपको प्रदान की है वो ग्रहण करो, एक्सेप्ट व्हाट आई हैव गिवन यू एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स। जो मैंने आपको दिया है, क्या दिया प्रभुपाद जी ने हमें, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब प्रभुपाद जी ने हमें महामंत्र दिया, वो ग्रहण करना और दूसरों को बांटना, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। और लास्ट में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, पतित किंकर पाद पद्म धूली करी देहो भक्ति विनोद आश्रय, मेरे को आपके चरणों में स्थान दो हे भगवान, मैं आपका नित्य दास हूँ, आमी तव नित्य दास भूलिया माया र पाश बद होए आछी दयामय, मैं आपका नित्य दास हूँ और माया के चंगुल में गिर गया हूँ, आप कृपया मुझे बाहर निकालिए। तो इसी तरह शिक्षाष्टकम प्रेयर में चैतन्य महाप्रभु हमें दिखाते हैं कि कैसे भगवान का नाम लेना है। एक्चुअली ये जो शिक्षाष्टकम जो है, ये 8 श्लोक हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रचना की है, और कोई किताब भगवान ने लिखी नहीं। एक बार भगवान ने एक कविता लिखी थी जो बहुत सुंदर थी, और महाप्रभु अपने एक मित्र के साथ नौका में जा रहे थे, और उनके मित्र भी वही सेम उम्र के थे, सेम पाठशाला में पढ़ते थे, और महाप्रभु ने अपने मित्र को ये कविता सुनाई। ये कविता सुन के उसके मित्र रोने लगे। महाप्रभु ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? तो बोले कि आपकी कविता तो बहुत अच्छी है, आपकी कविता सुनने के बाद मेरी कविता कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो महाप्रभु बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो, मैं अपनी कविता को गंगा जी में बहा देता। महाप्रभु दिखाते थे नम्र होना, अपने दूसरों का मान रखने के लिए स्वयं को झुक जाना। अभी आज के ज़माने में होता, दोनों ने एक ही कविता लिखी है तो एक व्यक्ति दूसरे की कविता को फेंक देता पानी, नहीं, या उसी को उठा के फेंक देता, न रहेगा बांस न बजेगी। लेकिन महाप्रभु दिखाते अपनी नम्रता। उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने 8 श्लोकों की रचना की, जो मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। आप सब जानते हैं ये 8 श्लोक, लेकिन 8 श्लोकों में भगवान सब भक्ति का रहस्य बता रहे हैं। ये उस समय है जब महाप्रभु अकेले बैठे हैं जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में। उनके साथ दो ही भक्त आए, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। और महाप्रभु उनके पास आए और बोले, प्रभु हर्षे प्रभु कहे सुना स्वरूप राम राय। हे स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सुनो, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। कलयुग में परम उपाय है नाम संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, सही तो सुमेधा पाए कृष्ण रचरण। जो सुमेधशा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भगवान का नाम लेकर जीवन की परम सफलता को प्राप्त करेंगे। और उन्होंने वो श्लोक बताया, भागवत में कौन सा श्लोक है जहाँ बताया गया कि जो सुमेधशा है, बुद्धिमान है, वो भगवान का नाम लेंगे? कौन सा श्लोक है वो? कृष्णम वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगाष्ट्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमेधश। जो सुमेधशा है, जिसकी बुद्धि अच्छी है, वो व्यक्ति भगवान के इस अवतार की पूजा करेंगे। कौन से अवतार? जो कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। सांगो पांगाष्ट्र पार्षदम, जो अपने पार्षदों के साथ है, नित्यानंद अद्वैत गदाधर, और क्या कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा बोलते बोलते महाप्रभु ने वो श्लोक बोला, पहला श्लोक। वो कौन सा श्लोक है आप सब बोलिए? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदनम प्रतिपदान पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम। श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त की तुलना एक दर्पण से की गई है, और भगवान का नाम जो है ये चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाला है। भव महादावाग्नि, ये संसार की अग्नि, जो आज के तात्पर्य बताया गया कि अग्नि में व्यक्ति जल रहा है, इस अग्नि को वो शांत करने वाली। और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चंद्रिका की किरण आने पे जैसे सफ़ेद रंग का जो कमल है, वाइट लोटस, वो खिलने लगता है, वैसे ही भगवान की हरि नाम की रूपी कृपा से क्या होता है, भक्ति की जो कलाएं हैं, वो भक्ति का फूल जो है खिलने लगता है। विद्यावधु जीवनम, विद्या का जीवन भगवान कृष्ण का नाम है। सारी विद्याओं का सार है हर समय कीर्तन करना और भगवान का नाम जप करना। और आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये भगवान का नाम क्या करता है? आनंद अम्बुधि, अम्बुधि बोलते हैं सागर, तो आनंद के जो सागर है उसकी सीमाओं को बढ़ाने वाले। प्रतिपदम, हर स्टेप पे पूर्णामृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में। सर्वात्मा स्नपनम, स्नपनम मतलब स्नान कराना, ये आत्मा को स्नान कराने वाले। जैसे हम शरीर को स्नान करने के लिए साबुन यूज करते हैं, ऐसे आत्मा के स्नान के लिए हरिनाम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु इस तरह गुणगान करते हैं। और फिर अगला श्लोक बोलते हैं, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः।
इसका अनुवाद है कि नाम नाम अकारी बहुधा। महाप्रभु बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आपके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग समय के अनुसार, जगह के अनुसार। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद प्रचार कर रहे थे, वो भी तो भगवान की भक्ति देना चाहते थे, लेकिन लोग इतने पतित थे कि वो परम सत्य को, फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। तो फिर उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें दी जो फॉलो कर सके, और बोला ठीक है कोई भी नाम लो, अल्लाह नाम लो, या गुरु ग्रंथ साहब में कई बार नाम आता है वाहेगुरु बोलते हैं। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली कृष्ण का नाम है, वाहेगुरु। व मतलब विष्णु, ह मतलब हरि, ग मतलब गोविंद, र मतलब राम। तो एक्चुअली भगवान के ही नाम है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है कृष्ण, सर्व आकर्षक। तो भगवान ने काल के अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग नाम दिए, लेकिन तत्रार्पिता बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्तियां नाम में हैं। कृपा शक्ति, ज्ञान शक्ति, सारी जो शक्तियां हैं वो सब हरे कृष्ण महामंत्र में है। तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, इसके लिए कोई काल विधान भी नहीं है। भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता। मुझे अभी ड्यूटी रूम में जाना है तो मुझे स्नान करना होगा, सफेद स्वच्छ वस्त्र पहनने होंगे, लेकिन नाम जप करने के लिए कोई नियम विधान नहीं है। नाम जप के लिए एक ही नियम है और वो है कीर्तनीय। हाँ, कीर्तनीय रविवार हरि नहीं, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा गाना। तो महाप्रभु की लीला में कहानी है कि एक बार महाप्रभु टॉयलेट में जाए, शौच क्रिया के लिए जा रहे थे, तो अपनी जीभ को रोक के रखे थे। उनकी जीभ स्वाभाविक भगवान नाम ले रही थी, अपने रोकने का प्रयास कर रहे थे, और एक छोटा बच्चा, क्या नाम था बच्चे का, गोपाल, क्यों रोक रहे हो अपने आप को, नहीं नहीं ये अपवित्र जगह है। तो बालक गोपाल बोला भगवान को, अगर वहां पर मृत्यु आ गई तो। ओ गोपाल, तुमने सही कहा, तुम मेरे गुरु बनने लायक हो, आज से तुम्हारा नाम होगा गोपाल गुरु। ऐसे हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए कि सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, प्रसाद हॉल में जाते हुए, प्रसाद खाते खाते बीच में बोलते रहना हरी हरी। क्या बोलना है? हरी हरी हरी। देखते हैं आप कितनी देर तक बोलते हैं, 15 मिनट हैं प्रसाद को, बोलते रहिए हरी 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 हरी। आप बहुत जल्दी थक गए, हरी 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 हरी, जस्ट चैंट हरी, नो मोर वरी। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप हरेक बाइट के साथ, जैसे आप चबा रहे हो, हरेक बाइट में हरी हरी बोल सकते हो तो पूरा दिन भी खा सकते हो, परमिशन है आपको। मैं गौर भगवान प्रभु जी परमिशन दे रहे, जितना जितना पूरा दिन खाओ, खाली हर एक बाइट कर खाओ, बोलो हरी 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 हरी। हैबिट बनानी चाहिए। आप बस में जा रहे हो हरी हरी, स्नान करने जा रहे हो, टॉयलेट में जा रहे हो हरी 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 हरी, तो उससे क्या होगा, जब मृत्यु आएगी तो आपके मुख से क्या निकलेगा, हरी हरी हरी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कोई नियम नहीं है भगवान के नाम के लिए, ये आपकी इतनी कृपा है, लेकिन दुर्दैव क्या है, मेरा दुर्भाग्य क्या है, मेरे को नाम में अनुराग नहीं है। और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, देखो जनरली प्रभुपाद जी जब ये श्लोक का अनुवाद करते हैं तो बोलते हैं मेरा दुर्दैव है, मेरे को नाम में अनुराग नहीं है, है ना ये। लेकिन चैतन्य चरितामृत में अलग अनुवाद दिया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं नाम जप करते समय अपराध करता हूँ, इसीलिए मेरे को अनुराग नहीं है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको अनुराग है नाम में, या उल्टा बोलूँगा कितने लोग हैं जिनको नाम में अनुराग अभी तक नहीं हुआ है, सभी उसी में। तो उसका कारण यहाँ बताया गया कि हम अपराध कर बैठते हैं। तो अपराध से कैसे दूर करें, हम रोज़ सुबह 10 नाम अपराध पढ़ते हैं और दिन में करते हैं। सुबह बोलते हैं नहीं करना चाहिए, दिन में कर लेते हैं, रात को माफ़ी मांगते हैं, फिर अकाउंट क्लियर कर लेते हैं। तो कैसे अपराधों से मुक्त हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं आप नहीं भी चाहोगे तो भी अपराध हो जाते हैं, तो क्या किया जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप जप करने से पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों को याद करो। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। सब जब शुरू करने से पहले याद करो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त। अगर आप पंचतत्व को याद कर रहे हो, ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं है, अपराधे दूरे जावे पावे प्रेम धन, सब अपराध दूर हो जाते हैं अगर आप याद करते हो गौरांग नित्यानंद। तो ये सीक्रेट है, नाम में रुचि जागृत करनी है तो अपराध दूर करना चाहिए, और अपराध को दूर करने के लिए गौर निताई को याद करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, जब माला पे जप कर रहे हो तो प्रत्येक मोती पे ऐसे ध्यान करो कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। एज यू आर फिंगरिंग द बीड्स यू कैन मेडिटेट दैट यू आर टचिंग द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हर एक मोती पे महाप्रभु के चरण कमल का ध्यान करो, क्योंकि ये बताया गया है दुष्करम सुकरम भवेत, दुष्करम जो बहुत मुश्किल कार्य है वो भी आसान हो जाता है, कैसे, चैतन्य महाप्रभु को याद करने से। और आसान से आसान कार्य मुश्किल हो जाता है वो कैसे, चैतन्य महाप्रभु को भूल जाने से। जब भी जप में मन नहीं लगे, कोई कठिनाई आए, बुरे विचार आए, तो बस याद करिए गौरंग, गौरंग का नाम लेते ही सारे ऑब्स्टेकल दूर हो जाएंगे। ये श्लोक बहुत सुंदर है, आप मेरे पीछे बोलिए, खाइते सुइते यथा तथा नाम लय काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि है। खाइते सुइते, खाते हुए सोते हुए उठते हुए जो हमेशा नाम लेता है, काल का परवाह नहीं करता, देश का पर, वो व्यक्ति को सफलता मिलती है। ये भक्ति योग का सार है, हमेशा नाम लेना। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धना भक्ति योग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। चैतन्य भागवत में कहा गया भक्ति योग का मतलब क्या है, कृष्ण नाम को याद करते हुए क्रंदन करना, रोते हुए पुकारना, हे कृष्णा हे गोपीनाथ हे राधा श्याम सुंदर, कब मुझे प्राप्ति होगी आपकी। अब फिर महाप्रभु बोलते हैं कि कैसे नाम लेना, उसका सीक्रेट बताते हैं। नेक्स्ट श्लोक, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु घोषित करते हैं कि सारे शास्त्रों के सारे श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक ये है, ऊर्ध्व बाहु करी, मैं हाथ ऊपर कर घोषणा करता हूँ। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं हाथ ऊपर करके घोषणा करता हूँ कि गले में कंठी माला धारण करके इस श्लोक को अपने गले में धारण करो। कौन सा श्लोक, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरवि श्रेष्ठ, स्वयं को घास के तिनके से भी छोटा मानना, जितना हम अपने आप को महान समझते हैं उतना नाम जप करना मुश्किल हो जाएगा। जितना हम मानते हैं कि मैं तो एकदम घास का तिनका, मतलब एकदम तुच्छ, कोई थूक भी दे तो कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को नाम में रुचि मिलेगा। तरोर इव सहिष्णु न, पेड़ के समान सहनशील होना, पेड़ के कोई काट भी रहा है पेड़ को और काटते काटते थक जाता है तो पेड़ उसको अपने फल दे देता है, और कभी कभी जब धूप होती है तो पेड़ धूप सहन करता है और दूसरों को छाया देता है, ये पेड़ का गुण है। और हरिदास ठाकुर उसके उदाहरण है जिन्होंने पेड़ के समान सहनशील। पेड़ का एक और गुण है, सूखी न मांगे जल, सूख जाने पर भी पेड़ कभी पानी मांगता नहीं, कोई दे दे तो ठीक है, ऐसे भक्त कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये अपने आप से बोले प्रभु ये प्रसाद है तो ले लिया, नहीं नहीं तो फिर कोई बात, हमारा वो लेवल नहीं है, इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि प्रसाद हॉल में जाके ही प्रसाद लें। लेकिन जो एडवांस डिवोटी है वो मांगता भी नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहा है, कोई बोले चलो ये लो प्रसाद है ठीक है, माधवेंद्रपुरी की तरह, वो मांगते भी नहीं थे, वो गोवर्धन में गए और भगवान श्याम सुंदर खुद उनके लिए खीर लेके आ गए, दूध लेकर आ गए। अमान ही ना मान देना, दूसरों को मान देना, स्वयं मान की इच्छा नहीं करनी। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों को प्रणाम करते हैं, वो देखते हैं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा तो अगली बार हम भी नहीं करेंगे। और अगला श्लोक बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। ये श्लोक बताता है कि भक्त की क्या अभिलाष है। जैसे कल मैं बता रहा था, लोग तिरुपति जाते हैं बदले में कुछ पैसे मांगने के लिए, बालाजी 1 करोड़ दे देना, 50 लाख तुम्हारा 50 मेरा, तो बिजनेस मेंटेलिटी है, ये भक्ति नहीं है। लेकिन सच्ची भक्ति का मतलब है न धनम। कई बार अगर लोग भक्ति करते हैं तो भगवान बिजनेस बढ़ाते नहीं है, बल्कि पूरा ही कंगाल बना देते। कोई बिजनेसमैन कथा सुन रहे तो सावधान हो जाइए, है ना। हाँ, भगवान पूरा कंगाल बना देते हैं। और फिर वो व्यक्ति रिश्तेदारों के पास जाता है और रिश्तेदार भी उसके ऊपर रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो पूरा भगवान पर समर्पित हो जाता। एक बार मैं पुणे में कहीं लेक्चर दे रहा था, एक कॉलेज में बता रहा था कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं सब कुछ छीन लेते हैं। यस्याहम अनुग्रामी हरिषे तधनम शनय। तो लेक्चर के बाद एक एमटेक इंजीनियर नया नया जॉब लगा था, 1 लाख रुपए महीने का हुआ है, बोले प्रभु जी आपने क्या बोला, क्या भगवान कृपा कर दे सब कुछ छीन लेंगे। बिल्कुल घबरा गया। मैंने बोला प्रभु जी हाँ वो है, लेकिन आपके ऊपर नहीं करेंगे वो अभी। तो वो शांत हुए, तो जब छोड़ने वाले थे, है ना। तो भगवान का समझना बहुत मुश्किल है। भगवान ने पांडवों को एकदम जंगल में भेज दिया, भिखारी जैसे बना दिया, लेकिन फिर भी पांडव भगवान को धन्यवाद दे रहे। सच्चे भक्त धन्यवाद देते कि भगवान आप जो भी करो। नेक्स्ट, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज सिरधूलि सदृशं विचिन्त्य। यही श्लोक आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। अयि नंद तनुजा, अयि मतलब ओ हे नंद नंदन, भवसागर में गिर रहा हूँ, आप मुझे बाहर निकालिए। जब मान लो आप कभी सागर में या नदी में डूब रहे, समझो आप नदी में डूब रहे हैं और आपको एक नौका दिखाई पड़ती है थोड़ी दूरी पे, तो आप कैसे पुकारोगे? आप बोलोगे हरि बोल, आ जाना, हो सके तो आ जाना। नहीं नहीं, आप कैसे बोलोगे हेल्प हेल्प हेल्प। ऐसे इमरजेंसी का भाव होना चाहिए भगवान का नाम लेने में, कि दिस इज माय लाइफ एंड सोल, ये मेरा जो नाम, ये मंत्र अगर अच्छा से बोल दिया तो श्याम सुंदर जी आ जाएंगे, दौड़ते हुए आ जाएंगे। अगर हम सच्चे दिल से एक बार भी पुकारें हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृपा करी मोरे पद धूलि सम तुम्हारा सेवक करू तुम्हारा सेवन, कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम, मेरे को आपके चरणों में एक धूलि का कण बना दो और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर महाप्रभु बोलते बोलते अगले श्लोक पे आ गए। वो कौन सा श्लोक है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहे न भविष्यति। हे भगवान मैं भवसाग, हे भगवान वो समय कब आएगा जब मेरे आंखों में आंसू होंगे, शरीर कांपने लगेगा एक्सटेसी में। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति इच्छा होनी चाहिए कि वो समय कब आए जब मैं नाम ले रहा हूँ और आंखों में आंसू आ रहे हैं, शरीर कंपन हो रहा है। ये एक्सटेसी के लक्षण है। हमारे लिए तो आंखों में आंसू आना बड़ा स्टेज है, अगर नयनम उन्मलितम आंखें खुली रहें जब में नींद नहीं आए वो भी बड़ी बात है ना। ध्यानपूर्वक जप करें। और महाप्रभु बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, आप मेरे पीछे बोलिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। हे प्रभु प्रेम धन के बिना मेरा जीवन बेकार है, आप मुझे दास बना लो, मुझे नौकरी दे दो और वेतन क्या दो, तनख्वाह क्या दो, प्रेम धन मुझे दो। और बोलते बोलते फिर महाप्रभु लास्ट 2 श्लोकों में पहुंचे। युगायितम निमिषेना चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे न मे। ये बता रहे हैं कि बिना कृष्ण के एक क्षण भी मुझे युग के समान प्रतीत होता है और मेरे आंखों से आंसू हो रहे हैं, जगत शून्य लग रहा है मुझे सिवाय कृष्ण के। जिससे हम प्रेम करते हैं अगर उसके दर्शन नहीं हुए तो बहुत दुख होता है। जैसे आपको प्रसाद, जैसे अभी समझो भी तो 9 बजे प्रसाद है, ठीक है 9-10 तक ठीक है, लेकिन मान लो आप निर्जला उपवास रख रहे हो और व्रत तोड़ने का समय है 5:30 बजे, तो कैसे विरह अनुभव होता है। मुझे याद है 2-3 साल पहले मैं वृंदावन आया था निर्जला एकादशी के लिए, क्योंकि यहाँ पर समय था 5:25 व्रत तोड़ने का, मुंबई में था 5:35, तो 10 मिनट बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और सुबह अनाउंसमेंट हुआ 5 बजे नरसिंह प्रेयर के बाद कि ऐसे ऐसे प्रसाद यहाँ पे कृष्णा हॉल में दिया जाएगा, सब होगा, वो पानी, वो जो गर्म पानी होता है और खिचड़ी और कल का महाप्रसाद। और मैं क्योंकि सीनियर हूँ, हमारे लिए एक अलग व्यवस्था की गई थी। तो अनाउंसमेंट के बाद हम जप कर रहे थे और घड़ी को देख रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत धीरे चल रही, हरे राम राम राम, 5:25, 24 हो गए, 24:30, और घड़ी गई 6, 7, 8, 9, 10। जैसे पानी पीने गए, एक भक्त बोले, प्रभु जी ये घड़ी 5 मिनट आगे है। तो इतना विरह लग रहा था, तो मैं सोच रहा था ऐसा विरह भगवान से कब होगा, है ना, बड़ा भगवान से कब विरह होगा। तो यहाँ पे बताया गया जब व्रत तोड़ने के समय, तो एक एक क्षण भी युग के समान लगता है, ऐसी गोपियों को सिवाय कृष्ण के एक एक युग के समान लग रहा है, एक एक क्षण, और आंखों में आंसू आ रहे हैं। लास्ट श्लोक है, अश्लिष्य वा पदरतम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महतम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परह। इसका अनुवाद है, हे कृष्ण, अपने चरण कमल पर गिरी हुई है दासी है, कृष्ण मुझे गले लगाओ या मुझे पैरों से कुचल दो। अश्ली से वा पाद रतम पिनष्टु माम, पिनष्ट पीस दो, या अदर्शनात मर्म हतम, या मुझे दर्शन नहीं दो, मेरे हृदय को तोड़ दो, आप जैसे भी करो, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपकी दासी हूँ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है हमारे लिए, ये तो बहुत ऊंचा स्टेज है। एटलीस्ट हम पहले त्रिनाद भी सुने चना आए, फिर ये स्टेज आएगा कि भगवान मुझे कुचल भी दे। जैसे कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, नहीं आए, लेकिन गोपियों ने कृष्ण को कभी भूले नहीं, वो याद करते रहे, रोते रहे, कृष्ण अभी आएंगे, अभी आएंगे। गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि गोपियों के प्राण क्यों नहीं चले गए, मृत्यु क्यों नहीं हो गई। ये बताते हैं कि ये गोपियाँ बताते हैं कि हमारे प्राण एक पक्षी के समान है, तोते के समान, और ये शरीर पिंजड़ा है, अगर पिंजड़े में कोई आग लगाता है तो पक्षी क्या करेगा, भाग जाएगा। ये पिंजड़े में आग लग गई है, लेकिन क्या हो गया कि उसके ऊपर एक पिंजड़े के ऊपर एक दरवाजे पे लॉक लगा दिया गया। वो लॉक क्या है, वो लॉक क्या, ताला क्या लगाया, कृष्ण का वचन कि मैं लौट कर आऊँगा। इसलिए गोपियाँ प्राण नहीं त्याग कर सकते, बोलते हैं कृष्ण शायद आएंगे, कृष्ण शायद आएंगे, अभी आज नहीं आए, कल आएंगे, फिर आएंगे। और उद्धव जी आगे उनको लगा रहे शायद कृष्ण आ गए। तो ये जो गोपियों का भाव है राधा रानी का, कृष्ण चाहे मुझे ठुकरा दें, कृष्ण मेरे को छोड़ के दूसरी गोपी के पास जाना चाहते हैं, तो मैं उस गोपी की दासी बन जाऊंगी, कृष्ण को प्रसन्न करना, ये भाव है। जैसे हम रामायण में देखते हैं, जब भगवान राम कितने तरीके से सीता की परीक्षा ली गई, और अंत में अग्नि परीक्षा होने के बाद भी भगवान राम ने सीता को ले लिया, और बाद में फिर एक धोबी की जब कंप्लेंट था तो भगवान ने उनको बोला ठीक है छोड़ के आ जाओ उसको, तभी सीता महारानी भगवान राम के चरणों को याद करते रहे और फिर धरती में प्रवेश किया। लेकिन भगवान के चरणों को हमेशा स्मरण कर। तो ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो पूर्ण समर्पण, मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, भगवान आप मारना चाहो या रक्षा करना चाहो, जो भी आप करो। और लास्ट में प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि मेरे को अपने दुख नहीं है, कृष्ण का दुख, अगर कृष्ण के सुख में, कृष्ण के सुखी करने में मुझे दुख होता है तो दुख ही बड़ा सुख है। समझ में आया, कृष्ण को सुखी करना है और कृष्ण को सुखी करने के लिए मुझे दुख भुगतना पड़ता है तो वो दुख भी सुख है। तो कौन सी कहानी है, सरदर्द की कहानी याद है, कृष्ण को सरदर्द होता है, नारद मुनि इंटरनेशनल वर्ल्ड घूम रहे होते हैं और वो सबको बोलते हैं कि एक वैष्णव के चरण की धूली चाहिए, तो सारे सब मना कर देते हैं, और अंत में किसके पास जाते हैं, गोपियों के पास। गोपियाँ बोलते हैं ले जाओ होलसेल द्रोण भर के ले जाओ, लेकिन आपको पता है क्या होगा, नहीं कोई बात नहीं हमें नरक जाना पड़ेगा, ये कृष्ण का सरदर्द दूर होता। प्रभुपाद जी लास्ट में बताते हैं एक कहानी ये आदित्य पुराण से, कि एक बार एक स्त्री थी जिसके पति को बहुत भयानक बीमारी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया, पूरे शरीर में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी सेवा कर रही थी। लेकिन वो व्यक्ति के विचार दुष्ट थे, वो एक वेश्या का संग करना चाहते थे, और ये उसकी स्त्री इतनी सिंसियर थी, बोले अगर मेरे पति को वो इच्छा है तो तो वो वेश्या के पास गई और उसकी दासी बन गई। उसको बोला कि आप मेरे पति को संतुष्ट करो। और जब वो वेश्या उस पति के साथ भोग करने के लिए आई तो वो सती अपने कोड़ी पति को लेके आई। जब उस पापी ब्राह्मण पुत्र ने देखा, अरे मेरे पत्नी इतनी बड़ी सतीत्व है, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना पापी हूँ, उसका भी मन बदल गया और वो बोले मैं नहीं संग करूँगा। लेकिन घर में लौट रहे थे, रास्ते मार्कंडेय मुनि दिख गए और मार्कंडेय मुनि के शरीर से स्पर्श कर दिया। हाँ, तू इतना गंदा व्यक्ति मेरे को स्पर्श किया, जा तेरा तेरे को शाप देता हूँ कि सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। तब उसकी पत्नी ने तपस्या की जिससे सूर्य उदय ही नहीं हो, सूर्य उदय ही रुक जाए। और फिर उसके पति को वरदान दिया गया लंबी आयु का, और एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों प्रकट हो गए। तो ये कहानी के तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे भक्त को अपने बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, बस मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। सम सिद्धिर हरि तोषण तोमार सेवा ते जय ते दुख, बोलिए से ही तो परम सुख। ये किसका लिखा हुआ भजन है? भक्ति विनोद ठाकुर। तुम्हारे सेवा ते जे दुख से ही परम सुख, मतलब आपकी सेवा में जो भी कठिनाई आ रहे हैं, जो भी दुख आ रहे हैं, वो मेरे लिए परम सुख है। तो ये भावनाएं हैं जो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं। हम तो उस लेवल पर नहीं हैं, शायद इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में पहुंचेंगे, लेकिन राधा श्याम सुंदर से ये प्रार्थना करनी है कि मुझे शुद्ध भक्ति मिले, इसी जन्म में कृष्ण प्रेम मिले, और मृत्यु होने से पहले एक बार जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, जैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, उस निसहाय भाव से हम जोर से पुकारें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई टीका या प्रश्न किसी को है? हरे कृष्ण। हाँ, क्या बोलते हैं? कथा के समय
सोने के समय नहीं लेना चाहिए।
नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि ध्यान एक चीज पे हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई ऐसा एडवांस डिवोटी है जो कथा भी सुन सकते हैं, जप कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग है, लेकिन जनरली थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक स्पेशल केस है, एक बार राधा कुंड में एक श्रीनिवास आचार्य की बेटी थी, वो कथा सुनते सुनते नाम ले रही थी, तो बाबा जी थे, वो उन्होंने डांट दिया उसको कि तुम ऐसे नाम नहीं ले सकते। लेकिन फल क्या हुआ, बाबा जी का पतन हो गया, क्योंकि वो एडवांस डिवोटी थी। लेकिन हमारे केस में क्या होगा कि अगर हम नाम जब भी करेंगे, भागवत सुनेंगे, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अपना लेवल देखकर, अगर आपका लेवल है, आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, तो गलत नहीं है। नहीं तो फिर एक चीज़ करिए, जैसे आपका। जय श्री प्रभुपाद की जय।